आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज के अखबार,
आज के अखबार।
नमस्कार, आज तारीख है 5 अप्रैल और ये है आज तक रेडियो का खास सेगमेंट आज के अखबार। यहाँ पर हम आपको देश विदेश के अखबारों से सुर्खियाँ बताते हैं। तो मेरा नाम अमन गुप्ता है और मेरे साथ हर रोज़ की तरह मौजूद हैं मेरे साथी प्रतीक वाघमारे। तो प्रतीक, चलिए शुरू कीजिए देश के अखबारों से, बताइए वहाँ क्या छपा है आज।
गुड मॉर्निंग अमन। आज सारे अखबारों में देश में पहली बार एक दिन में 1,00,000 मरीज जो कोरोना वायरस के मिले हैं उसे लेकर हेडलाइन छपी है। तो पिछले 24 घंटों का ये नया आंकड़ा सामने आया है, 1,03,358 कुल मरीज मिले हैं और ये 14 महीने के कोरोना काल में सर्वाधिक है। अब तक अमेरिका ब्राज़ील में ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे थे, लेकिन अमन अब भारत में इतने मरीज मिलने लगे हैं जितने 2 दिन पहले अमेरिका और ब्राज़ील में मिलाकर भी नहीं मिले हैं। और ये भी छपा है कि भास्कर में ही अब 100 दिन में दोगुने हो रहे मरीज, 1 महीने पहले 504 दिन में दोगुने हो रहे थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगले शुक्रवार से सोमवार तक भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। जी
प्रतीक, मेरे सामने अभी दैनिक भास्कर अखबार खुला हुआ है और इसमें उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के हवाले से एक खबर है फ्रंट पेज पर। हेडिंग लगी है, 3 दशक में पहली बार घाटी के सभी 30 जिलों में जा सकेंगे सैलानी। तो लगभग 30 सालों में अब ऐसा होने जा रहा है प्रतीक कि कश्मीर के जो 10 जिले हैं वो पर्यटकों के लिए पूरी तरह खुल रहे हैं। पहले सैलानी श्रीनगर, बडगाम, बारामूला और अनंतनाग ही जा पाते थे क्योंकि दक्षिणी कश्मीर जो था वो आतंक का गढ़ रहा है और वहाँ पर अक्सर आतंकी घटनाएं होती रहती थीं और इस वजह से पर्यटकों की आवाजाही वहाँ पर बंद थी। लेकिन अब वहाँ पर्यटकों की चहलकदमी देखने को मिलेगी। कुपवाड़ा का तंगधार हो, बंगस हो या बांदीपुरा का गुरेज हो, पुलवामा का या फिर शिकारगाह हो, इन सभी जगहों पर अब आपको पर्यटक दिखाई देंगे। हालांकि अभी पूरी तरह से ये जगहें लोगों के लिए नहीं खुली हैं लेकिन मई तक पूरी तरह से खुल जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी बता दें कि इस सीज़न में 1,00,000 से अधिक सैलानी कश्मीर पहुंच चुके हैं और गुलमर्ग जैसे जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पर होटलों की बुकिंग फुल चल रही है।
इसके अलावा अमन ये भी अखबारों में छपा है कि देश के सीने पर 23 जख्म। ये छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ जिसमें 23 जवान शहीद हुए उनकी ये खबर छपी है दैनिक भास्कर में। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के जंगलों में नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बल के 5 नहीं बल्कि 23 जवान शहीद हुए। ये जानकारी कल सुबह सामने आई है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने जवानों के शवों से हथियार लूटे और कई शहीदों के जूते और कपड़े तक उतार लिए हैं। तो इसके पीछे अब सरकार का क्या नया एक्शन प्लान है, इसे समझने के लिए आप आज का दिन जरूर सुने।
प्रतीक, एक खबर मैं आपको जनसत्ता अखबार से बताता हूं और हेडिंग है, ईडी ने कोयला चोरी मामले में बंगाल के पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। तो प्रतीक, पश्चिम बंगाल में कोयला चोरी के मामले की जांच पिछले साल नवंबर से चल रही है और इस घोटाले को लेकर अनूप मांझी उर्फ लाला का नाम सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय लगातार इस जांच में जुटा हुआ है और दूसरी गिरफ्तारी कल उसने की। ये दूसरी गिरफ्तारी हुई है बांकुड़ा पुलिस थाने में प्रभारी निरीक्षक अशोक मिश्रा की। बताया जा रहा है लाला से उनका संबंध था। इससे पहले जो ईडी ने गिरफ्तारी की थी वो विकास मिश्रा की थी। विकास मिश्रा विनय मिश्रा के भाई हैं जो तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता हैं। हालांकि अब तक जो इस घोटाले का सरगना है अनूप मांझी वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में नहीं आया है और इसके लिए 28 नवंबर को 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छापेमारी भी की गई थी।
और अब दैनिक जागरण में छपा है कि ट्राई करेगा सर्वे, कितने काम के हैं टेलीकॉम टैरिफ। तो ट्राई यानी कि दूर संचार नियामक ट्राई जो टेलीकॉम कंपनियों की ओर से उपलब्ध अलग अलग टैरिफ की उपयोगिता पर सर्वे की तैयारी कर रहा है। इसका पर्पज यही होगा कि अलग अलग कंज्यूमर्स की ज़रूरत के हिसाब से जो मौजूदा टैरिफ है वो कितने कारगर है। दैनिक जागरण में छापा गया है कि ट्राई ये परखेगा इस सर्वेक्षण के आधार पर कि कंपनियों के टैरिफ ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। क्योंकि नियामक का ये मानना है कि टैरिफ प्लान ऐसे होने चाहिए जिनमें कॉल या डेटा को लेकर ग्राहकों की अलग अलग जरूरतें पूरी हो सके। नियामक ये भी सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी ग्राहक को जबरन कोई प्लान न लेना पड़े, तो इसीलिए ये सर्वेक्षण को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। एक और ये इंटरेस्टिंग खबर है अमन, भास्कर में छपा है कि लोगों का धन और समय बचाने को देश भर में खोले जाएंगे ट्रैफिक ई कोर्ट। तो जितने भी यातायात के नियमों का लोग उल्लंघन करते हैं उसके बाद जो चालान जमा करने के लिए लोगों को अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि आप घर बैठे ही वो चालान जमा कर सकेंगे। देश भर में ट्रैफिक ई कोर्ट शुरू किए जाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 25 राज्यों में 1142 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। ई कोर्ट शुरू करने के लिए जुलाई 2021 तक की डेडलाइन भी तय कर दी गई है और ये निर्णय 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये जो ई कोर्ट है वो खोले जाने हैं। और कोरोना काल में देश भर की ट्रैफिक कोर्ट में जितने भी मामले लंबित थे उन्हें निपटारा कराने के लिए पहली बार मई 2020 में देश का पहला ई कोर्ट खोला गया था, ट्रैफिक ई कोर्ट, जो कि दिल्ली में 2 कोर्ट्स टोटल खोले गए थे। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, फरीदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में, नागपुर, पुणे में और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी ट्रैफिक ई कोर्ट खोले गए थे, तो ये एक अच्छा कदम है। हमें और ये भास्कर के न्यूज़ ब्रीफ में छपा है कि वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का ट्रायल हुआ है। दरअसल ये अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो लकवाग्रस्त इंसान होते हैं उन पर ये ब्रेन कंप्यूटर, वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर का ट्रायल किया जो कि सफल रहा है। इससे ब्रेन गेट का नाम दिया गया है। इससे होगा ये कि दिमाग से मिले सिग्नल्स के आधार पर कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किया जा सकेगा, तो ये एक नया तरीके का इनोवेशन है। और जनसत्ता में एक संपादकीय का मैं जिक्र करूंगा कि जो 1.5 महीने पहले चीन के साथ पूर्वी लद्दाख और पैंगोंग झील के लेकर जो बातचीत हुई कि सैनिक पीछे हटेंगे, डीएस्केलेशन होगा, और वो हुआ भी। लेकिन ये भी माना जा रहा था कि चीन अब देवसांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से भी अपने सैनिक को जल्द हटा लेगा, लेकिन इन इलाकों में अभी भी चीनी सैनिक जमे हैं। इसलिए अब सवाल ये है कि चीन कब अपने सैनिकों को यहाँ से हटाता है। ये संपादकीय चीन का रुख क्या है यह आप जनसत्ता से पढ़ सकते हैं। एक आर्टिकल भी छपा है कैसे साफ हो गंगा, क्योंकि जिन जिन शहरों से गंगा गुजरती है वहाँ का जितना भी फैक्ट्रीज का जो केमिकल है और सीवर का पानी है वो गंगा में गिरता है। अब इन शहरों में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता है। इसके अलावा जो यमुना है, गोमती है, घाघरा है, रामगंगा है, सरयू है, ये जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है इनका भी केमिकल जो है गंगा में गिरता है। इसके चलते व्यापक स्तर पर मानवीय जीवन के साथ साथ जल जीवन भी संकट में है। तो गंगा कैसे साफ होगी ये आर्टिकल छापा गया है। और एक और तस्वीर का मैं जिक्र करूंगा कि जो काफ़ी महंगी तस्वीर थी, 3.5 करोड़ की तस्वीर थी, वो मॉल में एक कपल ने गलती से ख़राब कर दी। तो ये सोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, वहाँ पर एक मॉल में आर्ट गैलरी में एक ये तस्वीर थी और ये इतनी बड़ी तस्वीर थी कि इसको लैमिनेट भी नहीं किया गया था और ये 3.5 करोड़ की तस्वीर थी। जब वहाँ पर एक कपल पहुँचा तो उन्होंने उसे गलती से बर्बाद कर दिया। तो जो पेंटिंग के पास पेंट कंटेनर और ब्रश रखा था वो दरअसल कलाकृति का हिस्सा थे, लेकिन इस कपल को लगा कि ये इसलिए रखे ताकि कोई भी आकर पेंटिंग पर पेंट लगा सके, तो इसलिए दोनों ने ब्रश चला दिया और सीसीटीवी में सारी वारदात कैद हो गई। पुलिस को जब सूचना दी गई तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने माना कि इन्होंने ये गलती से किया है इसलिए उन्हें बाद में छोड़ भी दिया है।
तो प्रतीक, ये तो हुई देश की खबरों की बात, जरा ये बताइए विदेश के अखबारों में आज क्या छपा है।
इंटरनेशनल अखबारों की बात करें तो अमन, सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा हूँ। इसमें छपा है कि यूएस में जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहाँ पर अब एक दिन में एवरेज 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है डेली बेसिस पे। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वहाँ पर चौथी वेव कोरोना की जल्द आ सकती है। कल अमेरिका में कुल 40 लाख से ज़्यादा, पहली बार इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और अमेरिका को इस बढ़ते वैक्सीनेशन के बीच ये भी झटका लगा कि जॉनसन और जॉनसन की वैक्सीन में एक्स्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मिलावट की खबर सामने आई, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में ये दोनों वैक्सीन बन रही थी। इसलिए अब जो नया वैक्सीनेशन का जो डिलीवरी होगी उसमें ज़रूर देरी की जाएगी। इसके अलावा गार्डियन के अखबार में छपा है कि बाइडेन ने जो $2 trillion का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बताया है उसे लेकर अब रिपब्लिकन्स जो हैं वो अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, इसकी बड़ी स्तर पर आलोचना भी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि दरअसल सरकार जो है वो टैक्स लगाना चाहती है, ये बहुत ज़्यादा टैक्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर दिया जा रहा है और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स की ओर दिया जा रहा है। लेकिन अमन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि एनवायरमेंट के तरफ बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है पूरी दुनिया में ही, और अगर इस तरीके से कोई नया प्लान सामने आ रहा है लेकिन उसे ऑपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और द गार्डियन में ही छपा है अमन कि 500 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा उसी वेबसाइट पर हैकर्स के द्वारा उसे बेचने के लिए वहाँ पर अपीयर हुआ। 500 मिलियन यानी लगभग 50 करोड़ से ये ज़्यादा का डेटा है, ये ऑनलाइन उपलब्ध हो गया। तो एक तरीके से ये फेसबुक पर कई बार डेटा को लेकर आरोप लगते ही रहते हैं, डेटा लीक को लेकर। तो इससे ये भी सामने आता है कि मतलब डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है फेसबुक के द्वारा, और कई सोशल मीडिया साइट्स भी ये डेटा इसको कलेक्ट करती है। और इससे ये समझ में आता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कितनी कम सिक्योर है। तो आज के अखबारों की यही प्रमुख सुर्खियां हैं अमन, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्रतीक, देश विदेश के अखबारों से ये सुर्खियाँ हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप जिस तरह से फ्यूनरल पे गोलियां चला रहे हो, 500-500 लोगों को मार दिया है, बच्चों को मारा है गोलियों से, आप यह बंद करो। आप इतने कमजोर नहीं उनके सामने, हम नेबर हैं, ये बहुत सारी चाबियां उनकी हमारे पास हैं, पर हकीकत यह है कि हम एक मजबूत देश हैं, हमको यह दिखाना चाहिए। हम चीन नहीं है, हम भारत हैं। भारत और चीन के बीच में अभी मुझे एक डिफरेंस देखने की इच्छा थी। यस, हम लोगों के सामरिक हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन भाई साहब इतना ही ये नहीं किया हमने, इस बात का मुझे
तो ये बहुत विचित्र है। अभी अपने भी सोच रहे थे कि ये दोनों पे कॉटन और चीनी पे तो बेबी पहने लागी साटन, अब काहे मंगाए काटन चना जोर कर पहने लागी साटन, अब काहे मंगाए काटन चना जोर करम, अब कोरोना मार रहा है टक्कर, बिना स्वाद के क्यों दे शक्कर चना जोर कर।
अरे गजब।
तीन रंगों के तीन किरदार, ताऊ बाबा और मैं यानी सरदार, हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट तीन तार, नया हफ्ता नया पवाल, aajtak.in/radio के साथ साथ Spotify, JioSaavn, Apple पॉडकास्ट और Google पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।